તારીખ 18/9/1991 શ્રી સમયસાર ગાથા 181-183 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 30 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ધીમો છે તથા અવાજ ફાટે છે.
ઉત્તમ શર્મ સંયમ ધર્મ કા સ્વરૂપ ક્યા હૈ યાની સંયમમય ધર્મ હૈ उसका स्वरूप कैसा है उसका संक्षेप में व्याख्यान है. उपयोग बाह्य सब विषयों को छोड़कर संयमित होकर अपना स्वरूप में जम जाता है, लीन हो जाता है, तब परमार्थ संयम कहने में आता है. परमार्थ संयम कहो, उत्तम संयम कहो, एक ही बात है. आत्मस्वरूप की श्रद्धान ज्ञान सहित शुभ और अशुभ परिणाम को छोड़ करके स्वरूप में एकाग्र होना, वीतराग भाव से स्वरूप में लीन होना, उसी को उत्तम संयम धर्म कहने में आता है. ऐसी आत्मा की उत्तम संयम रूप दशा होने से बाह्य शुभ परिणाम तो नहीं होते, लेकिन तो अशुभ परिणाम तो कहाँ से होवे. जब शुभ परिणाम भी छूट जाता है तो अशुभ परिणाम तो होगा ही नहीं. जब अशुभ परिणाम नहीं होगा तो अशुभ प्रवृत्ति भी नहीं होगी. अशुभ प्रवृत्ति पंचेंद्रिय के विषय रूप होती है, उसमें अन्य जीवों की हिंसा होती है, प्राणघात होता है, दुख होता है. ऐसा प्रकार भी वहाँ नहीं बनने पाएगा, उसी को व्यवहार संयम कहने में आता है. इसलिए ऐसा फलित होता है कि परमार्थ संयम में व्यवहार संयम स्वयं आ जाता है, स्वतः हो जाता है. अकेला व्यवहार संयम जो पालता है, थकाई जीवों के हिंसा जो नहीं करते हैं, लेकिन जिसको परमार्थ संयम आत्मा में उपयोग का नियमित हो जाना, स्थिर हो जाना, ऐसा नहीं बनता. उसको केवल शुभ भाव होता है, शुभ बंध होता है, लेकिन धर्म होता नहीं है. आचार्य देव इधर पद्मनंदी में 96वीं गाथा में संयम धर्म का वर्णन करते हैं कि जंतु कृपार्जित मनसः समीतिषु साधोः प्रवर्तमानस्य प्राणेन्द्रिय परिहार संयम आहुर महामुनयः. संयम में मुख्यतया मुनियों के व्यवहार चर्या का व्याख्यान आता है. वहाँ 6 काय जीवों की रक्षा की प्रधानता से बात चलती है. जिसका चित्त दया से आर्द है, भिंजा हुआ है, दया से जिसका चित्त भीगा हुआ है, और जो समिति गुप्ति में प्रवर्तमान है, और जिसको पांचों इंद्रियों के विषय का त्याग है, ऐसे मुनिवरों को संयम धर्म होता है, ऐसा महामुनियों ने कहा है. आत्मभान पूर्वक जिसको वितराग भाव रूप अकषायी करुणा प्रकृति है, ऐसे वितराग भाव वाले मुनियों को दूसरे प्राणी को दुख होवे ऐसा विकल्प ही नहीं होता है। इसलिए उनका चित्त दया से भीगा हुआ है ऐसा कहने में आता है। तो उनको राग भाव नहीं है, राग रूप प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए अन्य विषयों की प्रवृत्ति में होने वाली हिंसा मुनियों को नहीं होती। इस प्रकार निश्चय संयम मैंने उत्तम संयम के साथ व्यवहार संयम स्वतः जुड़ा हुआ है और खास प्रकार के खास करके मुनियों के लिए ये व्याख्यान चारित्र गुण के हिसाब से कहने में आया है। अपूर्व अवसर में भी मुनिपद मुनिपद की भावना भाते हुए श्रीमद जी ने ये बात गाई है कि संयमुना हेतु थी योग प्रवर्तना स्वरूप लक्ष्य जिन आग्ना आधीन, जो अपने स्वरूप में लीन होते होते वो संयम पालते हैं और बाह्य संयम की क्रिया घट जाती है और परिपूर्ण वितराग स्वरूपी आत्मा में पूर्ण वितराग भाव से लीन हो जाते हैं। ऐसी भावना अपने लिए भी श्रीमद जी ने गाई है अपूर्व अवसर के पद में। ये संयम के विषय में संक्षेप में व्याख्यान है। चालू अधिकार हैं समय सार संवर अधिकार गाथा 181-82-83। वेद ज्ञान संवर का कारण है, संवर का उपाय है। जिसको धर्म मैंने संवर करना हो, वितराग भाव प्रकट करना हो, उसको भेद ज्ञान पूर्वक निर्विकल्प वितरागी दशा प्रकट करनी चाहिए। नाटक समय सार में बनारसी दास ने ये बात लिया है कि भेद ज्ञान का फल शुद्ध उपयोग है। शुद्ध उपयोग किसको होता है कि जो राग से भिन्न ज्ञानमय आत्मा में अहमपना धारण करता है उसको शुद्ध उपयोग आता है। यहाँ भी कल थोड़ी क्रम की बात चली थी कि राग कर्म और नौकर्म तीनों पद से भेद ज्ञान करने की बात है। तो राग से या क्रोधादि से भाव कर्म से भेद ज्ञान करने का शुरू करना चाहिए। अब वो कैसे हो कि राग और ज्ञान दोनों भिन्न भिन्न जाति के परिणाम हैं और अपना अस्तित्व राग में अनादि से महसूस हो रहा है, ये गलती हो रही है, ये विपरीत परिणमन है। परिणमन में ये विपर्यास है, उल्टा परिणमन है जो आत्मा को दुखदायक है और चतुर्गति संसार का ये कारण है। इस परिस्थिति को पलटकर ज्ञान से ज्ञान स्वभाव में अहमपना धारण करना और राग का मैंने ज्ञान में अपना अस्तित्व ग्रहण होने से राग में अस्तित्व का ग्रहण नहीं होना, यही भेद ज्ञान है। तो वो किस तरह करे, ऐसा करना चाहिए लेकिन कैसे करे, इस समस्या का समाधान आचार्य महाराज ने दिया है कि जानन क्रिया के आधार से जब ज्ञान स्वभाव का ग्रहण होता है, जानन क्रिया में ज्ञान स्वभाव प्रकट विद्यमान है और अनुभव गोचर है, इसलिए ज्ञान क्रिया आधार है, जिसके आधार से आधेय मैंने ज्ञान स्वभाव का ग्रहण किया जाता है। तो अपना परिणमन में ऐसा अवलोकन करना है कि मेरे ज्ञान में ज्ञान स्वभाव मुझे मालूम पड़ता है कि नहीं है। क्या जहां तक ज्ञान परिणाम में, ज्ञान की पर्याय में ज्ञान स्वभाव मालूम नहीं पड़े, वहां तक वहां खोजने का प्रयास चालू रखना चाहिए। विषय इतना संक्षिप्त यहां पर हो जाता है कि कोई प्रकार का की गूंच यानी उलझन होने का यहां पर अवकाश नहीं है। जैसे हमें आचार्य देव ने ऐसा उपदेश दिया कि तुम्हारा स्वभाव तुम्हेरा ज्ञान क्रिया में है, ज्ञान क्रिया आधार है और उसमें ज्ञान स्वभाव आदि है, कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, एक ही जगह ढूंढने का है और जहां तक नहीं मिले वहां तक बस। तो वहां ज्ञान स्वभाव ग्रहण होने का आसान हो जाता है। इस परिस्थिति में ज्ञान स्वभाव वहां विद्यमान होने से ज्ञान स्वभाव का ग्रहण हो जाता है। आसानी से ज्ञान स्वभाव का ग्रहण होवे, इसलिए अनेक प्रकार की वचन शैली, कथन शैली अनुभवी पुरुषों ने कही है। जैसे कि कैसा है ज्ञान स्वभाव के नित्य उद्योत स्वरूप है, छिपा हुआ नहीं है। कैसा है अपना स्वरूप के नित्य प्रकाशमान ज्योति स्वरूप है। क्या कहते हैं, चमकती हुई जागृत ज्योति स्वरूप है। और कैसा है स्वभाव के जो स्वयं से स्वसंवेद्यमान है, ऐसा स्वभाव है और कभी भी अपना स्वभाव से वो विचलित नहीं होता है, कहीं जाता नहीं है, आता नहीं है, हमेशा हमेशा विद्यमान रहता है, ऐसा स्वभाव है। ऐसे बहुत से शब्द से टंकोत्कीर्ण ज्ञान ज्योति, टंकोत्कीर्ण शब्द लगाते हैं। टंकोत्कीर्ण मैंने क्या कि जो टांकने से उत्कीर्ण मैंने खुदा हुआ है, लिखा हुआ है तो उसको कोई निकाल देता है लेकिन खुदा हुआ है वो निकलता नहीं है। ऐसे अपने ज्ञान में अपना ज्ञान स्वभाव टंकोत्कीर्ण है, उत्कीर्ण है, एम्बोस्ड जिसको कहते हैं, तो उतना उभर के बाहर आता है। हम उनको देखने की का दृष्टिकोण अपनाते नहीं, ग्रहण करते नहीं तो हमें नहीं दिखता है, वरना उल्लंघन नहीं कर सके ऐसे, ऐसा एक स्वभाव है कि जिसका हम उल्लंघन नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा सिद्ध होता है कि ज्ञान ज्ञान में ही है और क्रोध क्रोध में ही है। ज्ञान में क्रोध नहीं यानी रागादि नहीं, और रागादि और क्रोधादि में ज्ञान नहीं। और पुनः क्रोधादिक में, कर्म में और नो कर्म में ज्ञान नहीं, और ज्ञान में क्रोधादिक कर्म और नो कर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्यों आपस में एक दूसरे का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उनको आपस में परस्पर अत्यंत स्वरूप विपरीतता होने से, ज्ञान स्वभाव से शांत स्वरूप सुख स्वरूप है और क्रोधादिक भाव स्वभाव से ही दुख रूप आकुलता रूप है, परस्पर विरुद्ध है। जैसे अंधकार और प्रकाश परस्पर विरुद्ध है, सफेद कलर और काला कलर परस्पर विरुद्ध है, तो उनकी विरुद्धता से उनका अलग अलग स्वरूप है वो सहज मात्र में पहचाना जाता है। ठीक उसी तरह रागादि और क्रोधादि भाव अंधकार स्वरूप है और ज्ञान स्वसंवेदन से प्रकाश स्वरूप है। बारहवीं प्रकाश शक्ति है, 47 शक्ति है ना, पीछे परिशिष्ट में 47 शक्ति है, उसमें 12वीं प्रकाश शक्ति है। इसकी व्याख्या किया है आचार्य देव ने, स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति। प्रकाश मैंने ये लाइट नहीं है पुद्गल वाला, क्या प्रकाश मैंने स्वसंवेदन को प्रकाश कहते हैं। स्वसंवेदन को प्रकाश क्यों कहते हैं कि अपना अस्तित्व है, अपनी मौजूदगी है, वो वेदन से ग्रहण करने में आती है। जहां जहां ज्ञान वेदन है वहां मेरा अस्तित्व है, मेरी मौजूदगी है, ऐसा अनुभव आता है। इसलिए अस्तित्व प्रकाशित होता है ऐसा कहने में आता है। क्या अस्तित्व प्रकाशित होता है, अस्तित्व प्रकट होता है। अस्तित्व तो है लेकिन अस्तित्व का अनुभव नहीं है, अस्तित्व का वेदन नहीं है ज्ञान में, तो अस्तित्व है नहीं है वो बात अपने को समझ में ही नहीं है। यानी अन्य स्थान में अपना अस्तित्व कर रखा है, मान रखा है, ग्रहण कर रखा है, लेकिन स्वसंवेदन से ये प्रकाशमान होता है। इसलिए प्रकाश शक्ति का वर्णन ही आचार्य महाराज ने स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति ऐसा लिया है। देखें पीछे एक शब्द आगे और भी है, स्वयं प्रकाशमान विशद, इतने शब्द पड़े हैं। कैसा, अपने आप से, स्वयं मैंने अपने आप जो प्रकाशमान होता है, प्रकट होता है, अनुभव गोचर होता है, कैसा प्रकाशमान होता है, विशद रूप से। विशद मैंने स्पष्टतया, कोई अनुमान लगे कि कोई अच्छा, कोई ऐसा गुफा में कोई चीज पड़ी है, कुछ ऐसा लगता है कि आत्मा है, ऐसी बात नहीं है। स्पष्टतया विशद मैंने एकदम निर्मल ज्ञान में विशद रूप से, मैंने स्पष्ट रूप से अनुभव में आवे। कैसे अनुभव में आवे, स्वसंवेदन से अनुभव में आवे। ऐसा स्वसंवेदन मई स्वानुभव मई प्रकाश शक्ति आत्मा में त्रिकाल पड़ी है, वो प्रॉपर्टी आत्मा की। और कितनी है उस कि बेहद है, असीम है, अपना स्वसंवेदन केवल ज्ञान में पूर्ण प्रकट होता है तो कितना है, बहुत घनिष्ठ स्वसंवेदन होता है। वो चतुर्थ गुण स्थान में जो स्वसंवेदन प्रकट होता है, इससे अनंत गुण घनिष्ठ स्वसंवेदन केवल ज्ञान में होता है, ऐसी शक्ति आत्मा में है। वो उसकी ताकत कितनी है उसका एक अंदाज लगा सकते हैं कि सातवीं नारकी में अशाता की पीड़ा बहुत होती है, हजारों रोग से शरीर ग्रसित होता है। क्या शरीर की जो पीड़ा है, अशाता की वेदना है, हजारों रोग का उपद्रव वहां रहता है, और एक दो रोग नहीं, इधर तो एक रोग होवे तो भी माथा ठिकाने नहीं रहवे, वहां तो सैकड़ों हजारों रोग का उपद्रव होता है और ऊपर से मार पड़ता है, और अंधकार कितना कि हजार लाखों करोड़ों अरबों साल तक प्रकाश देखना नहीं मिले, प्रकाश का दर्शन नहीं होवे, घनिष्ठ अंधकार, अंधेरा अंधेरा अंधेरा, 33 सागर तक अंधेरे में रहना पड़ता है, अंधेरी कोठड़ी में जैसे पुर दिया, इधर तो एक दिन रखे तो भी पता चल जाए, पागल हो जाए पागल एक दिन रखे तो, इधर तो हाँ अंधेरा को जान, यही तो बात करना है, अंधेरा को जानने वाला तो ज्ञान है। ये तो प्रतिकूलता का वर्णन इतना है कि इतनी वेदना, इतनी दुर्गंध, इधर तो एक कण भी इसका आवे तो आदमी मर जावे, दुर्गंध से मर जावे, जैसे गैस से मर जाता है ना ऐसे, फिर भी स्वसंवेदन, जगन्य स्वसंवेदन चतुर्थ गुण स्थान सम्यक दर्शन का काल में सब वेदना गायब, अंदर में निर्मल प्रकाश होता है स्वसंवेदन का। अल्प स्वसंवेदन है चतुर्थ गुण स्थान में, तो अल्प संवेदन स्वसंवेदन उतना पावरफुल होता है, उतना शक्तिशाली होता है कि वो नारकी की अनंती वेदना को छूट जाने का कारण बन जाता है। जैसे वेदना है ही नहीं, उस वक्त इतना आनंद और सुख का अनुभव होता है कि जैसे अमृत की घूटें घूटे घूटन पीने में आती हो। जब चतुर्थ गुण स्थान में ऐसा स्वसंवेदन है, केवल ज्ञान में कितना होगा, ऐसा अनंत स्वसंवेदन की, स्वसंवेदनमय प्रकाश की मूर्ति अभी देह में विराजमान है सबको, उसकी प्रतीति आनी चाहिए। प्रतीति आने से सारा भवन है, परिणमन मैंने सारा भवन बदल जाता है, इसकी प्रतीति नहीं है तो है वो नहीं है बराबर हो जाता है। आत्मा में नहीं, नहीं, इसमें क्या है कि परिणति रहती है, उपयोग नहीं रहता है लीनता का, लेकिन परिणति अनंत गुण की रहती है, उसमें ज्ञान का लब्ध रूप परिणाम है और चारित्र का अंश भी है वितरागता का। श्रद्धा तो पूरी पूरी आत्मा के साथ जुड़ी हुई रहती है, पूर्ण श्रद्धा, उसमें अंश नहीं है, पूरी श्रद्धा का परिणमन आत्मा के साथ अवेद है, ज्ञान में लब्ध में स्वसंवेदन है, चारित्र में वितरागता है और सुख के अमृत की भी, सुखामृत की भी परिणति उसमें बहती है। ऐसा अनंत गुण का परिणाम की परिणति मुख्यतया रहती है चतुर्थ गुण स्थान में निरंतर, नींद में भी और जागृति में भी, क्योंकि वहां न नींद है न जागृति है। ऐसी परिणति हर हमेशा रहती है। ऐसा एक साधक की स्थिति में उपयोग भले कभी कभी आता है, लेकिन परिणति निरंतर रहती है और उसमें बहुत जागृति होती है। उतना ही नहीं, इससे आगे कहें तो जो उपयोग बाहर जाता है वो उपयोग भी ज्ञेय के साथ एकत्व को प्राप्त नहीं होता, वो भी अपने आप को भिन्न रखता हुआ पर पदार्थ के प्रति थोड़ा मुख बदलता है। क्या है? उपयोग का अंतर्मुख बना था तो उपयोग ऐसे बहिर्मुख होता है, तो भी अपने आप में अपना भिन्नत्व रखते हुए ऐसा प्रसन्नमुख उपयोग होता है। तो बहुत अंतर है इसमें। एक परिणमन साधक दशा का बहुत अलौकिक होता है। अगर इसकी सही पहचान एक दफे भी आ जावे, क्या ऐसे मोक्ष मार्गी धर्मात्मा के परिणति का एक दफे भी पहचान आ जाए कि ऐसा होता है साधकपना, तो उस वक्त आत्मा में स्वभाव के संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं ज्ञान में, जो कभी निष्फल नहीं होते। ये आत्म स्वभाव का बीज ज्ञान कहा है महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने इसको क्या कहा? को बीज ज्ञान है। बीज का अंकुर आएगा 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 ही। ये बीज कभी बिना अंकुर रह जावे ऐसा नहीं बनता। बीज में से अंकुर जो फूटेगा निकलेगा, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का अंकुर इसमें से पैदा हो जाएगा। जैसे आम की गुठली चौमासा में कोई नीचे जमीन में गिर गई तो यहां से दो पत्ता निकलता है, पत्ता से चल जाता है, जो पत्ता बाहर निकलता है उससे पता चलता है कि ये किसका पेड़ होगा। आकार से, पत्ते के आकार से पता चलता है कि आम का वृक्ष होने वाला है, उस पर आम लगेगी। बीज को देखा नहीं, लेकिन अंकुर को देखने से बीज कैसा है इसका पता चलता है, फल कैसा आएगा इसका भी पता चलता है। ज्ञान कैसा काम करता है? एक अंश को देखता है, बाकी की सब बातें समझ में आ जाती है। ऐसे जिसको सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन प्रकट है, ऐसे धर्मात्मा की अंतर परिणति को जिसने पहचाना, उसमें उसको स्वभाव का दर्शन हुआ। क्या? धर्मात्मा की पहचान में स्वभाव का दर्शन होता है, और जिसको स्वभाव का दर्शन होता है उसको स्वभाव का संस्कार का बीज ज्ञान हो जाता है, बुद्धि बीज उसको कहते हैं। उसमें से अपने आप को सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का अंकुर मिलता है। हाँ, प्रत्यक्ष से ही पहचाना जाता है। प्रत्यक्षता में पहचानने का मौका ज्यादा मिलता है, परोक्षता में तो अनादि अज्ञानी जिसको देशना लभी नहीं मिली हो या संस्कार नहीं मिला हो वो नहीं पहचान पाता। जैसे गुरुदेव को समय सार पढ़ करके आत्मज्ञान हुआ, तो महाविद्य क्षेत्र में प्रत्यक्ष भगवान के सुनने से या मुनियों को का समागम करने से या दूसरे ज्ञानियों के समागम में प्रत्यक्ष जाने में संस्कार ले लिए थे, वो संस्कार लेकर इधर आए थे, इसलिए परोक्ष में भी ज्ञान की प्राप्ति हो गई, लेकिन सबों को ऐसा नहीं होता है। और जब हमको पता नहीं है कि हमें संस्कार मिला है कि नहीं मिला है, तो हमें तो प्रत्यक्षता का ही भाव आना चाहिए और भावना रहनी चाहिए कि हमें प्रत्यक्ष सत्पुरुष मिलना चाहिए। अगर सत्पुरुष प्रत्यक्ष मिलेगा तभी उनको पहचान पाएंगे, और पहचानेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ऐसा चालू है। तो वहां से वो प्रकट रूप से ग्रहण कर सकते हैं। कोई ऐसा प्रश्न करे समुद्र के किनारे पर जाकर के, अपना पीठ तो रखे समुद्र के प्रति और मुख रखे जमीन के प्रति, और फिर ऐसा प्रश्न करे कि समुद्र इतना बड़ा है तो मुझे उसका एक बिंदु भी क्यों नहीं दिखता, थोड़ा भी पानी क्यों नहीं दिखता, इतना बड़ा समुद्र है, आप कहते हैं कि बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे क्यों नहीं दिखता कि अपना मुख फेर लिया है, कहां से दिखेगा, उन्मुख हो गए, सन्मुख हो गए तो दिखे बिना रहे नहीं। ज्ञान से ज्ञान को देखना है, इससे सस्व सन्मुखता आती है। आचार्य महाराज ने ऐसी बात क्यों ली, आधार आधे संबंध वाली बात क्यों नहीं ली, कि तुम्हारा ज्ञान स्वरूप ही आत्मा ज्ञान स्वभाव तुम्हारे ज्ञान में है, देखना भी ज्ञान से है और ज्ञान स्वभाव को ही देखना है, उसमें स्वसन्मुखता हो जाएगी। जहां तक उन्मुख है वहां तक नहीं दिखता है, ज्ञान ज्ञान को देखने लगे वेदन करने लगे तो स्वसन्मुखता में तो नहीं देखे ऐसा बन ही नहीं सकता। ये धर्म क्रिया है, स्वसन्मुख होना वही अपूर्व है। क्या अभी तक अनंत काल में धर्म के नाम पर जो भी किया है वो परसन्मुखता में सब कुछ किया, भगवान का दर्शन परसन्मुखता में किया, भगवान की पूजा परसन्मुखता में की, शास्त्र का स्वाध्याय परसन्मुखता में किया, और जो भी किया वो परसन्मुखता में किया, कभी हमने स्वसन्मुखता नहीं की। अगर एक दफे कर लेवे तो छुटकारा हो जाता है। उनको परसन्मुख में अच्छा लगता है, क्या रुचि उनकी जो है, जिसको पर रुचि कहते हैं, तो पर चीज उनको अच्छी लगती है, है? हाँ, पर रुचि में होता है। स्वरुचि में दिशा बदलती है और पर रुचि में परसन्मुखता रहा करती है। तो देखें, हमको गुरुदेव जैसे महापुरुष मिले, कब से मिले हैं? बराबर, ऐसे तीर्थंकर जैसे महापुरुष मिले, और उन्होंने ये उपदेश भी उत्कृष्ट पद्धति से दिया, क्योंकि ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनकी जो उपदेश की शैली होती है, पद्धति होती है, वो ज्ञानियों में भी बहुत कम ज्ञानियों को होती है, ऐसी होती है। जब वो आत्मा की बात करते हैं, अब देखिए स्मरण कर लीजिए आप, गुरुदेव को कैसा देखते हम, कैसा देखना चाहिए, कि जब वो आत्मा की बात करते हैं तो आत्मरस में विभोर हो जाते हैं, ऐसा गुरुदेव को देखना चाहिए प्रवचन के काल में। क्या देखा था ऐसा? गुरुदेव प्रारंभ करते थे प्रवचन का, जब प्रारंभ करते थे ना तो एक शब्द बोलते थे कि ये आत्मा, ऐसा कहते तो जन जनाटे हो जावे सुनने वाले को, क्या ये आत्मा, ऐसा कहते तो आत्मा खड़ा हो जावे, ऐसा रस था उनका। नित्यानंद, निर्मलानंद, सहजानंद, फिर इतना रस आता था गुरुदेव को कि इनके बहुत से विशेषण वो बोलने लगते थे, इतने आत्म रस में विभोर हो करके प्रवचन देते थे। तो उसमें क्या सन्मुखता है वो झलकती थी, क्या ऐसे महापुरुष की वाणी में आत्मसन्मुखता क्या चीज है वो उभर के बाहर आती है। तो हमें उतनी जिज्ञासा से, इस चीज को देखने की उत्कृष्ट जिज्ञासा से अगर हम सुनने को बैठते हैं तो हमको सब दिखाई देता है। अगर हमारा ध्यान नहीं है ऐसी बातों पर तो ये पर रुचि में हमारा सुनना होता है, और उसमें हमें कुछ प्राप्ति होती नहीं है। चाहे अनंत काल तक सुने, ये आयुष तो उतना है ही नहीं, इधर तो 150 साल में योग छूट जाता है, या तो ज्ञानी का आयुष पूरा होता है या तो हमारा पूरा हो जाता है, इधर तो इतना लंबा काल का योग नहीं मिलता। लेकिन पर सन्मुखता में, पर रुचि में अनंत काल सुने ने तो भी कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए काल से संबंध नहीं है, वास्तव में काल से संबंध नहीं है। हमारे से जो पुराने हैं उनको हम कहते हैं कि आपको प्रवचन देना चाहिए और हमको कुछ मिलना चाहिए आप लोगों से, क्या अब तो पुराने हैं ना, तो नए से सुनना ऐसा क्यों? ठीक है, पुराने को ज्यादा मिलना चाहिए। और वो गुरुदेव ने क्या कहा, गुरुदेव ने कैसा कहा, उन्होंने बहुत सुना है तो उसके पास तो बहुत माल होना चाहिए। ज्यादा काल तक लिया हुआ खजाना वो खोले और दूसरों को बतावे, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसी बात है, जिसको जन्म से ये बात मिली, खोजने को जाना नहीं पड़ा, तो उतना पुण्य ज्यादा है और समय भी ज्यादा मिलता है और ग्रहण करने का अवकाश भी ज्यादा रहता है, ऐसा होना चाहिए। तो क्या कहते हैं, इधर चलता है, ये एक चौथे नंबर का पॉइंट है। पहले से ले लिए तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का नहीं है। मैंने ज्ञान राग का नहीं, क्रोधाधिक का नहीं, क्रोधाधिक ज्ञान का नहीं, दोनों की सत्ता, मैंने अस्तित्व अलग अलग है, एक की सत्ता में दूसरे की सत्ता का अभाव है। तीसरा, कि दोनों अपने अपने स्वरूप में होने से दोनों में आधार आधे संबंध नहीं है। तीन बात करके अब चौथी बात क्या किया कि आपस में स्वरूप विपरीतता है, अंधकार और प्रकाश की भांति। जैसे अंधकार और प्रकाश बिल्कुल विरुद्ध स्वभावी है, वैसे विभाव राग क्रोध और ज्ञान बिल्कुल विरुद्ध स्वभावी है। ज्ञान चैतन्य स्वरूपी है, चैतन्य स्वभावी है, और रागादि परिणाम जड़ स्वभावी है। क्रोध की प्रकृति होती है ना जड़ प्रकृति कर्म की, और क्रोध का जीव का भाव कर्म होता है, दोनों को क्रोध कहते हैं। तो दोनों का एक नाम क्यों रखा? क्योंकि भाव में सदृशता है। भाव में सदृशता होने से आत्मा का क्रोध भाव को भी जड़ स्वभावी कहने में आता है, इसलिए उसको प्रकृति कहते हैं। उनकी स्वरूप विपरीतता होने से उसको परमार्थ भूत आधार आधे संबंध नहीं है। आत्मा रागादि का आधार लेता है, ज्ञान रागादि का आधार लेता है, वो इनकी भूल है, गलती है। परमार्थ रूप से वास्तविक रूप से आधार आधे संबंध होता ही नहीं, क्योंकि क्रोधादि नाश हो जाता है, ज्ञान का नाश होता नहीं है। अगर क्रोधादि के आधार से ज्ञान रहता होता तो क्रोध का नाश होने से ज्ञान का भी नाश हो जाता। उसको परमार्थ भूत आधार आधे संबंध नहीं है, और ज्ञान का स्वरूप जैसे जानन क्रिया है। देखो ज्ञान का व्यक्त स्वरूप क्या है, जानन क्रिया वो ज्ञान का स्वरूप है। अकेला जानना, सिर्फ जानना, मात्र जानना, उतना ज्ञान का स्वरूप है। जिस तरह ज्ञान का स्वरूप जानन क्रिया है, वैसे ही ज्ञान का स्वरूप क्रोधादि क्रिया भी है ऐसा, और क्रोधादि का स्वरूप जैसे क्रोधादि क्रिया है, वैसे क्रोधादि का स्वरूप जानन क्रिया भी है ऐसा किसी भी प्रकार से स्थापित कर सकते नहीं, ऐसा सिद्ध हो सकता नहीं। सिद्ध करना चाहे तो भी सिद्ध कर सकते नहीं है, ऐसा कहते हैं। इतनी स्वरूप विपरीतता है कि आत्मा क्रोध स्वरूप है ऐसा स्थापित नहीं कर सकते, क्रोध आत्म स्वरूप है ऐसा स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि जानन क्रिया और क्रोधादि क्रिया भिन्न भिन्न स्वभाव से प्रकाशमान है। ये पांचवा फैक्टर लिया, पांच मुद्दा से इस पैराग्राफ में बात किया है कि दोनों का स्वरूप विपरीतता है, दोनों का स्वभाव भी विपरीत है। क्या? जानन क्रिया और क्रोधादि क्रिया भिन्न भिन्न स्वभाव को प्रकाशित करता है, और इस प्रकार से स्वभाव भिन्न होने से वस्तु भिन्न ही है। भिन्न स्वभाव वाले होने से वस्तु भिन्न है। जैसे अग्नि गर्म है और पानी शीतल है तो वस्तु ही भिन्न है, अग्नि से पानी भिन्न है। अग्नि पर पानी डाला जाए तो अग्नि का नाश हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल विरुद्ध स्वभावी है। ऐसे ज्ञान बलवान हो जाएगा तो क्रोधादि का नाश हो जाएगा। ये स्वभाव का पांचवा मुद्दा लिया है। जानन क्रिया और क्रोधादि क्रिया भिन्न भिन्न स्वभाव से प्रकाशता है, दोनों का प्रकटपना ही भिन्न भिन्न स्वभाव से है। देखिए बात आसान कर दी है कि वो प्रकट रूप से ही भिन्न भिन्न स्वभाव वाला दिखता है, अप्रकट नहीं है, अनुभव गोचर है, इसलिए भिन्न स्वभाव का अनुभव होता है। और इस प्रकार से ज्ञान को और अज्ञान मैंने क्रोधादिक को, जिसमें ज्ञान नहीं है, ऐसे क्रोधा क्रोधादिक को आधार आधेपना बिल्कुल नहीं है। ये आधार बुद्धि छूट जाने से हमेशा के लिए अपनी दीनता छूट जाती है। आत्मा अज्ञान अवस्था में स्वयं का आधार बुद्धि को त्याग करके या उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए पराधीनता में पराधीनता का स्वीकार कर लेता है। और जहां तक पराधीनता का स्वीकार है, दुख ही दुख होता है, पराधीनता में दबना पड़ता है। पराधीनता का नाम क्या है कि उसमें दबना पड़ता है, और पराधीनता में दबने से आत्मा को दुख होता ही रहता है। इसलिए यही मुद्दा मुख्य रूप से लिया है इधर, कि आधार आदेश संबंध को समझो। किस तरह समझो? अनुभव को देख करके समझो कि ज्ञान ज्ञान के आधार से उत्पन्न होता है और राग के कारण से उत्पन्न होता है। हमारे स्वाध्याय में भी ऐसा प्रश्न चलता है कि पहले तो विकल्प होवे फिर ज्ञान होवे ने, क्या क्या प्रश्न होता है कि हम तो रहे विकल्प वाले, तो पहले समझने का विकल्प होता है फिर ज्ञान होता है। तो विकल्प की राग के आधार बुद्धि छोड़ाने का जहां स्वाध्याय चलता है, वहां विकल्प का आधार को मजबूत कर लेवे हम, तो स्वाध्याय में समझ उल्टी हो जाएगी, सुलटी नहीं रहेगी। इसलिए हमारी समझ में अच्छी तरह आवे, इसलिए हमें हमारे ज्ञान की उत्पत्ति को देखना है कि हमारे में ज्ञान हर समय उत्पन्न होता है, तो किसका आधार से उत्पन्न होता है, किसका वो आधार लेता है तो उत्पन्न होता है। क्या ज्ञेय जानने में या राग या विकल्प होता है इसके आधार से होता है, या ज्ञान को इसका आधार नहीं है? श्री गुरु कहते हैं कि तेरे ज्ञान को किसी का आधार नहीं है, न किसी के आधार की जरूरत भी है। ये हम वस्तु स्थिति को अच्छी तरह जान करके कहते हैं। तुम देख लो अपने आप में, तुमको हम जो कहते हैं वो सही मालूम पड़ेगा। जहां तक ऐसा मालूम नहीं पड़े, उसे देखते रहो, उसकी तलाश करते रहो, अवश्य मालूम पड़ जाएगा कि ज्ञान ज्ञान के आधार से उत्पन्न होता है, रागादिक विकल्प और परज्ञेय के आधार से उत्पन्न नहीं होता है। और जब ज्ञान ज्ञान के आधार से उत्पन्न होता है, तो भेद ज्ञान ऐसा जब पता चला, तो भेद ज्ञान होना आसान है। जहां तक आधार बुद्धि राग की और परज्ञेय की रहेगी, भेद ज्ञान होने वाला नहीं है। जब भेद ज्ञान नहीं होगा, तो शुद्धोपयोग और समर होने वाला नहीं है। ये सीधी सादी बात है। इसलिए इस मुद्दे से, इस लॉजिक से यहाँ आचार्य महाराज ने समझाया है। आगे दृष्टांत देकर और स्पष्ट करेंगे विषय को आचार्य महाराज।